मुकम्मल इस्लामिक सेंटर बनने जा रहा है ताकि स्टोविल में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आसानी हो। यहाँ डेली और जुमे की नमाजों के साथ साथ इवनिंग हिफ्स क्लासेस और संडे को कुरान क्लासेस का आगाज हो चुका है। 6000 स्क्वायर फीट पर बनेगा स्टोविल का नया पहला इस्लामिक सेंटर। मई 13 को क्लोजिंग डेट है। इस नए काम में दिल खोल कर ताउन कीजिए। फॉर डोनेशन विजिट darulkhair.ca या कॉल कीजिए 416-292-1818 या 416-738-5934।
इस हफ्ते इफ्तार रेडी करें बड़ी सेविंग्स के साथ। फूड बेसिक्स में आए और पाए 4.54 केजी नूर बासमती राइस सिर्फ 699 में और हैंस और खास दही सिर्फ 199। लो हो गई इफ्तार रेडी और लो हो गई सेविंग्स। फूड बेसिक्स, वेयर यू ऑलवेज गेट मोर फॉर लेस।
सेहत एक अनमोल नेमत है जो हर शख्स को हासिल नहीं। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अफराद तंदुरुस्ती के हुसूल के लिए आपकी दुआओं और अतियात के मुंतजर हैं। इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान की आबादी के लिए उम्मीद की वाहिद किरण है जो उनकी बुनियादी सेहत का ख्याल और हर मर्ज में उनकी मदद के लिए मौजूद है। ज़कात के फर्ज से खिदमत के फरीजे तक आप और इंडस साथ साथ।
इस रमजान सहरी हो या अफ्तारी, समोसे हो या कबाब, छोले हो, दही बड़े या फ्रूट चाट, रमजान की हर ग्रोसरी मिलेगी आपको रियल कनेडियन सुपर स्टोर में। मजीद मालूमात के लिए लॉग इन करें @realcanadiansuperstore.ca।
इस स्प्रिंग में आ गई है बैकयार्ड की बहार, क्योंकि लूज और रोना स्प्रिंग फेस्ट शुरू होने जा रहा है। तमाम गार्डनिंग एसेंशियल्स पर 30% तक डिस्काउंट और हर जुमेरात को एक नई डील का फायदा उठाएं। मार्कम, स्कारब्रो और ब्रैम्पटन के लूज और रोना स्टोर पर जाएं और $500 तक के इनाम जीतने का मौका पाएं। और आज ही लूज और रोना स्टोर पर जाएं और बहार अपने घर लाएं।
ट्रकिंग कंपनियां लई विंडजर शहर च अपना ट्रक टर्मिनल खोलने का सुनहरी मौका। 2024 च बन जा रहे नवे विंडजर डिट्रॉयट ब्रिज तो 20 मिनट की दूरी ते हाईवे 401 दे बिल्कुल नेड़े ट्रक टर्मिनल दी जोनिंग वाले लॉट अवेलेबल ने। तेजी नाल तरक्की कर रहे इस इलाके च आने वाले समय च काफी सारे वड्डे प्रोजेक्ट आ रहे ने ते हो सकदा तुहानू बाद च ट्रक टर्मिनल दी जोनिंग वाली एहो जिही जमीन वाजिब कीमतां ते ना मिले। मौके दा फायदा उठाओ ते हुणे कॉल करो चरणजीत बराड़ 647-300-8436 647-300-8436।
जी साहब, नाज़रीन वेलकम बैक अगेन एंड अब चलते हैं हम बाकी की खबरों की जानिब। जी
हाँ जी। अच्छा माई भाई, टेस्ला के जो सीईओ है ना एलोन मस्क साहब, वो आपको पता है कि अक्सर ही वो उनके माशाल्लाह से 30 मिलियन जो हैं जी ट्विटर के ऊपर उनके 80 मिलियन ट्विटर के ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं।
yes.
तो वो अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई ये जो फ्री प्रेस है या ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सोशल मीडिया के ऊपर कितनी फ्री है। अच्छा अच्छा, ये जो खबरें हैं जिस वक्त आती थी तो वो लोग कहते थे कि अच्छा जी ठीक है, ये तो बड़े वो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के यानी के मानने वाले हैं। अब लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ट्विटर में तकरीबन 9% स्टेक खरीद लिया है। और देखने में तो आपको 9% लग रहा है लेकिन ये 73.5 मिलियन शेयर्स हैं और इनकी कीमत जो है $3 बिलियन है एज ऑफ जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है उस वक्त तक। तो अब ये क्वेश्चन आज इसके ऊपर किया गया है कि जी ये तो कहते थे कि सोशल मीडिया के ऊपर फ्री स्पीच जो है फ्री है भी कि नहीं है, और खुद अब इतने बड़े इंजन जो है उसकी इन्होंने वो ले लिए हैं, शेयर्स ले लिए हैं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस?
एक्चुअली ही इज गोना बी, ही वांट्स टू मेक इट फ्री।
अच्छा,
वांट्स टू मेक इट फ्री। 9.2% इन्होंने लिया है और जब इन्होंने अनाउंस किया ना लास्ट फ्राइडे को, कुड यू इमेजिन ट्विटर का स्टॉक जो है वो दैट वेंट अप 25%।
यस दैट्स राइट,
25%। सो ही इज ऑलरेडी मेक 25% ऑन दैट।
ओह यस, या भाई हमें भी जो है ना फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए।
यू आर इट,
जो हमारी भी चुनियां कुछ इन्वेस्ट कर
रहे हैं, इन्होंने लगाया पैसा और 25% ऑफ दैट इज ऑलरेडी मेड बिकॉज़ द
अच्छा जी, आज बड़ा मुझे हंसी आई, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रों हैं उनका एक बयान देख के, आपको पता ही अभी मैंने आपको बताया कि जो अमेरिकन जो है उन्होंने कहा है कि जो बुचा के एरिया में टाउन में जो यूक्रेन में हुआ है वो अच्छा, असल में हुआ क्या है, ये वीकेंड के ऊपर उन्होंने अपना टाउन ऑफ बुचा दिखाया है यूक्रेन वालों ने, जो कि बिल्कुल जो उनका कैपिटल कीव है उसके पास है, पूरी स्ट्रीट्स उसने उन्होंने दिखाई हैं जिसके के ऊपर जो हैं लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं स्ट्रीट्स के ऊपर, तो मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, वो और उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये इन्होंने मैसकर किया है रशिया ने, उसके ऊपर आज जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं मैक्रों साहब उन्होंने कहा है जी कि मैं अपने सारे एलाइज जो हैं उनके साथ मिलकर कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ रशिया का ऑयल एंड गैस आप जो है बैन करें बल्कि इनके ऊपर फर्दर जो है आप लगाएं और सैंक्शंस, क्योंकि जो कुछ इन्होंने ये इधर किया है ये वो कहते हैं जी सैंक्शंस इनके लिए जरा पेनफुल बनाएं, क्योंकि जो कुछ इन्होंने बुचा में किया है उसके लिए इनको जो है वो सजा देनी चाहिए, क्योंकि दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो मैं पूछना चाहती थी पायन, अपनी हिस्ट्री भूल गए हो तुसी, इसको भी वर्स किया है जिधर जिधर आपने भी हुकूमत की हुई है, खास तौर पर रवांडा में यही आपने किया, पकड़ पकड़ के लोगों को बुचर किया वहां पे, तो अपनियां कणियां भूल जाते हो तुसी हैं जी। तो ये आज एक रेडियो को जो है उधर फ्रांस इंटर रेडियो को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी खास तौर पर ईयू पार्टनर्स के अंदर जो जर्मनी है उसको मुझे जोर देने की जरूरत है कि आप सैंक्शन जो है वो सख्त किस्म की पेनफुल सैंक्शन इसके ऊपर रशिया के ऊपर लगाएं। अच्छा, अब ये जब सारी खबरें वो उन्होंने अमेरिका ने भी कह दिया जी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की है उसमें से निकालें, फ्रांस ने ये कह दिया, बाकी भी बड़े जो है मर्मर्स जो है वो यूरोपियन यूनियन में शुरू हो गया, तो क्रेमलिन ने इसका बड़ा एक्सेप्शन लिया इसके ऊपर, उन्होंने कहा ये हमारे खिलाफ जो है ये प्रोपोगंडा है और ये झूठ है, हमने इस तरह का कोई कार्रवाई हमने नहीं की, और वैसे भी वो कहते हैं जी कि हम यूनाइटेड नेशंस को अर्ज करते हैं कि वन साइडेड स्टोरियां मत सुना करो, हमारी भी कोई स्टोरी आप सुन लें। अच्छा, इनके जो क्रेमलिन के जो स्पोक्समैन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने आज कहा है कि आप खुद ही देखें कि जो टाइम लाइन ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर रशिया ने अटैक किया और ये लाशें नजर आई हैं, वो टाइमलाइन एक्चुअल इवेंट्स के साथ तो मैच ही नहीं करता, क्योंकि वी वर नॉट इवन बम्बॉर्डिंग या के कुछ कर रहे थे हम वहां पे, हमारी तो कोई वहां पे एक्टिविटी ही नहीं चल रही थी यूक्रेन के अंदर उस वक्त, तो वो टाइम मैच नहीं कर रहा जिसके के ऊपर ये कह रहे हैं। तो आज उन्होंने बड़ी सख्ती से इनको कहा, उन्होंने कहा कि ये सारे एक्यूजेशन और झूठ है हमारे खिलाफ, और यूनाइटेड नेशंस को हम अर्ज करते हैं, जो इनकी सिक्योरिटी काउंसिलर्स के लिए इन्होंने एक मीटिंग मंगवाई है, उसने कहा जी हमारी बात भी सुनो, हमारा भी सुनो नैरेटिव कि हम क्या कहना चाहते हैं, और ये यूक्रेन झूठ बोल रहा है, तो ऐसे हुए। एंड जनाब, आज जो हैं बहुत दिनों के बाद जो नॉर्थ कोरियन जो प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीमो ही कह सकते हैं उनको, किम जोंग उनकी बहन जो है वो आज सामने नजर आई। हुआ क्या है कि ये आपको पता ही है कि जो नॉर्थ कोरिया है अब कॉन्स्टेंटली मिसल के जो है वो टेस्ट कर रहा है, मिसल टेस्ट कर रहा है, जिसकी के वजह से साउथ कोरिया बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया के जो लिबरल प्रेसिडेंट हैं मून जैन इन, उन्होंने कहा था कि हमारी बड़ी सेटलमेंट अब नॉर्थ कोरिया के साथ हो गई है और अब ये इस तरह के जो हैं वो नहीं करेंगे, एंड वी विल गो टूवर्ड्स ग्रेटर रिकन्सिलिएशन एंड पीसफुल सेटलमेंट्स। तो अब ये जो है जब इन्होंने ये मिसल के टेस्ट करने शुरू किए तो साउथ ने कहा जी कि हम बड़े ज्यादा कंसर्न हैं, दुनिया को इसके ऊपर देखने की जरूरत है और ये जो है इनको रोका जाए और प्रेशराइज किया जाए। उसके ऊपर इनकी जो बहन है उन्होंने आज जो है बड़ा गुस्सा मनाया है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये स्कम, उसको कह दिया है साउथ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर को, उन्होंने कहा वो जो स्कम जो जाके सारी जगह पे हमारे खिलाफ बोलता जा रहा है, तो मैं उसको जरा कह रही हूं कि आप खामोश रहो, क्योंकि अगर आपने खामोश आप ना रहे तो फिर हम और ज्यादा ये टेस्ट बढ़ा देंगे और ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फिर आप फेस करना इधर रीजन के अंदर। तो जनाब आज एज इफ द ब्रदर वॉज लेस, अब बहन जो है वो भी मैदान में जो है वो उतर गई है। अच्छा जी, वीकेंड के ऊपर और भी बड़ी खबरें चलती रहीं और उसमें एक बड़ी खबर श्रीलंका से भी थी। श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उसके लिए जो है कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने कर्फ्यू की कोई परवाह भी न किए हुए वो सड़कों पे हजारों ही लोग निकल आए थे सड़कों के ऊपर श्रीलंका में। और बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट हैं गोटा पाया राजापक्षे, और ये सारा खानदान जो रूल कर रहा है, ये राजापक्षे जो फैमिली है ये असल में रिजाइन करे एज अ रिजल्ट अंडर दिस, क्योंकि ये चीजें संभाली नहीं इनसे जा रही और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस डीप हो गया है, लोगों के पास पेट्रोल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है और मुल्क में पेट्रोल भी नहीं है कि गवर्नमेंट उनको पे ही नहीं कर सकती। 26 मिनिस्टर्स टुडे दिस मॉर्निंग मंडे को उन्होंने रिजाइन कर दिया है वहां पे, और उन्होंने जो है राजापक्षे साहब उनको कहा है कि भाई आप नई गवर्नमेंट बनाए। अच्छा, इसमें जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये है कि राजापक्षे साहब की अपनी भी फैमिली के तीन बंदों ने रिजाइन किया है। राजापक्षे साहब के जो यंगेस्ट भाई हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने रिजाइन किया है। इसके अलावा उनके जो बड़े भाई चमल हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया है। फिर नमल थे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रिजाइन किया है। तो मतलब ये सारा खानदान ही उसमें बैठा हुआ था जी पॉलिटिक्स में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता और जगहों पे भी होता है। तो बहरहाल जी इन्होंने भी रिजाइन किया और अब गवर्नमेंट को कहा है कि आप रिफॉर्म्स लाएं और फौरन आप जो है वो करें, तो अब देखेंगे। जाहिर है क्योंकि अब तो ये क्राइसिस बहुत बढ़ गया, 26 मिनिस्टर्स का रिजाइन कर देना, एटलीस्ट इनके अंदर कुछ शर्म तो है, ये अपनी सीट छोड़ देते हैं। हमारे मुल्क में तो लोग कुर्सी बिल्कुल नहीं छोड़ते। अच्छा जी, हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि राणा अयूब साहबा जो हैं वाशिंगटन पोस्ट की जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लेकिन रहती वो ज़ाहिर हिंदुस्तान में हैं, तो वो जा रही थी कुछ लेक्चर्स के लिए लंदन में और फिर उसके आगे उन्होंने और भी जगह जाना था, तो उनको जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था उन्होंने सफर करने से रोक दिया था। आज जो जस्टिस चंद्रा धारी जो बैठे हुए थे वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने इनको इजाजत दे दी है कि ये ट्रैवल कर सकती हैं। और इनका केस जो था असल में जो लड़ रहे थे वरिंदर ग्रोवर साहब, उन्होंने कहा भाई कि ये किस तरह की फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि जिसको आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अपने लेक्चर के लिए जा रही थी। ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो कहती हैं कि नहीं, इनकी एक जो एनजीओ ये चलाती हैं उसके लिए कोविड-19 के उन्होंने पैसे लिए थे लेकिन वो उन्होंने उस एनजीओ पर नहीं लगाए, अपने ऊपर लगाए हैं, तो उसके लिए इन्होंने जो है करप्शन की है, तो अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हम इसको कर रहे हैं। बहरहाल जी, जो आज यहां पे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो कि ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि ये आप इसको जाने ना दें क्योंकि अगर ये एक दफा गई तो ये वापस नहीं आएगी। तो उसके ऊपर जो इनके सॉलिसिटर ग्रोवर साहब थे उन्होंने कहा जी कि हर वक्त तो आप उसको ईडी के ऊपर अपीयरेंस के लिए बुला रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है कि वो मतलब है कि ऐसे एब्सकॉन्ड करे और आपके आके, फिर तो वो एब्सकॉन्ड करेगी और वो कर सकती नहीं है। तो इस मौके पे राणा अयूब साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा जी मेरा सारा खानदान, मेरी एक्सटेंडेड, मैं एक्सटेंडेड फैमिली में रहती हूं, वी लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली, तो मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूं, मेरी फैमिली इधर है तो मैं कैसे भागूंगी, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं बाहर भाग के जाऊंगी तो वहां पे मैं अपना खर्चा पानी कैसे चलाऊंगी क्योंकि मेरा तो सारा बैंक अकाउंट आपने फ्रीज किया हुआ है, तो मुझे बाहर जाके भाग के जाने में मतलब क्या मजा है फिर, है ना। तो मेरा तो आपने सारे वो किए, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तो सारी गेम तो पहले की है भाई, सही है ना जी। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि मैं कोई भाग भाग नहीं रही। तो बहरहाल जी उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जिसको जाने दो अपने लेक्चर्स के लिए। द क्वेंट की आज एक स्टोरी है और इनके मुताबिक वीकेंड के ऊपर हिंदू जो महा पंचायत एक दिल्ली के अंदर जो है वो की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी, और यहां पे जो लोग बोल रहे थे वो थे प्रीत सिंह एंड पिंकी चौधरी, जो कि आपको पता ही है कि वो अक्सर जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, और इनके साथ जो है यति नार सिंह आनंद भी थे जिन्होंने कुछ अर्सा पहले आपको पता ही है कि हरिद्वार में धर्मा संसद बुलाया था। तो इन्होंने कहा है जी, इन्होंने फिर से एक दफा वायलेंस की कॉल दी है और इन्होंने कहा है कि अगर कोई मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर अगले 20 साल में बना तो 50% ऑफ यू हिंदूज विल बिकम मुस्लिम्स और 40% मुसलमानों को तो मर्डर ही कर देंगे मुसलमान इस मुल्क के अंदर, 10% हिंदू जो हैं वो अपनी बेटियां और अपनी जो बहनें हैं वो मुसलमानों को दे देंगे उनको मुसलमान करने के लिए, और तुम सारे रेफ्यूजी कैंप्स में रहोगे क्योंकि अच्छी अच्छी पोजीशंस पे सारे मुसलमान आ जाएंगे। तो ये है फ्यूचर, तो इस फ्यूचर को चेंज करने के लिए मैं तुमसे पूछता हूं सारे हिंदुओं से कि क्या तुम मर्द हो, अगर तुम मर्द हो तो मर्द की निशानी ये होती है कि वो अपने पास वेपन्स रखता है, तो तुम वेपन्स रखो। इसके अलावा ये जो कश्मीर फाइल्स जो बड़ा वो जो फिल्म आई है अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं ये मुसलमान, तो वो मुसलमान जो इसके बारे में बात कर रहे हैं क्या उन्होंने ये फिल्म देखी है, और अगर देखी है तो मेरा उनके लिए एक सुझाव है कि ये सारे मुसलमान अपनी औरतों को और अपनी प्रॉपर्टीज को हिंदुस्तान के अंदर छोड़ के इंडियन ओशन के अंदर जंप करके मर जाएं, और मुसलमानों के लिए के पास अब सिर्फ ये एक ही रास्ता है, तो और कोई रास्ता इनके लिए नहीं। तो ये जिस वक्त वीडियो वायरल हुई तो जाहिर है कि इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया और लोगों ने कहा कि भई ये व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया। तो उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त ये हो रहा था सारा कुछ तो पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस जो थी वो बिल्कुल लग रहा था कि इनएफेक्टिवली बस खड़ी हुई थी, कोई ये हेट स्पीच को रोक नहीं रही थी। तो लेकिन पुलिस कैसे रोक सकती है भाई, पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है ना, तो अगर लड़ाई झगड़ा वहां पे नहीं हो रहा था तो फिर वो कैसे कहती बाबा जी अपना मुंह बंद करो, कैसे कहती है जी ऐसे। अच्छा जनाब, एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही है कि कर्नाटका के अंदर भी चीजें बहुत ज्यादा ठनी हुई है। पहले उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों को जितने भी हिंदू जो फेस्टिवल्स होंगे उसमें ये लोग ठेले नहीं लगा सकते, और इसके अलावा फिर उन्होंने कहा जी कि हलाल मीट नहीं बेच सकते। अब इन्होंने जी एक नया मसला जो है वो ये लेकर आ गए हैं, वो कह रहे हैं जी कि जहां जहां अजान होएगी मुसलमान जो हैं ये लाउड स्पीकर मस्जिदों में लगा के अजाने देते हैं। इनके जो एक हैं श्री राम सेना के जो चीफ हैं प्रमोद मुथलिक, उन्होंने प्रमोद मुथलिक साहब ने कहा है कि जैसे कि हमारे जो चीफ हैं इधर के जो ये ठाकरे साहब राज ठाकरे साहब जो हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद नहीं किए गए तो हम जैसे कि ये एमएनएस के जो चीफ हैं गुड्डी पदवा, उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के पास अपने भी लाउड स्पीकर रखो जिसके के अंदर जो है आप अपने भजन लगाओ और जरा ज्यादा ऊंची आवाज में लगाओ, यानी कि हनुमान 40वां जो है वो आप ऊंची आवाज में लगाओ ताकि अजान की आवाज सप्रेस की जा सके।
सही।
तो वो कहते हैं जी हम अपने ये सारे लीडर्स जो है इनको हम सपोर्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि हम कब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहां पे उसको कह रहे हैं, लेकिन ये कावर्ड और स्पाइनलेस गवर्नमेंट जो है ये कुछ भी कर रही नहीं रही और मस्जिदों के अगेंस्ट क्रैकडाउन नहीं कर रही है। अच्छा जी, जो ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव था ये जो आया था उसमें नेशनल असेंबली के जो डेप्यूटी स्पीकर थे उन्होंने कहा कि ये जी ऑपोजिशन की जो है ये जो है ये जो लेकर आए हैं तो इसमें हम इसको ट्रैश करते हैं, ये इसको बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है नेशन के साथ थोड़ी देर के लिए खिताब किया, उसमें उन्होंने जो है सारे पाकिस्तानी कौम को बड़ी वो दी मुबारकबाद दी, और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात की कि ये फेल हो गई है पूरी तरह से, और साथ ही उन्होंने जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं उनको एक नाम भेजा और उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि आप जो जस्टिस गुलजार साहब हैं उनको आप लेकर आए। अच्छा, इसके ऊपर एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर जनाब अब बड़ा एतराज आ गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उमर अताब बंदियाल साहब, उन्होंने कहा है कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है नेशनल असेंबली का स्पीकर रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है अंडर आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको कहा जा रहा था कि आप सुओ मोटो जो है वो एक्शन लें। इन्होंने कहा जी कि एक लार्जर बेंच बैठा हुआ था जिसके के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जमाल खान मंदोकेल थे। उन्होंने कहा जी हम दोनों साइड्स को सुनना चाहते हैं, उसके सुनने के बाद ये हियरिंग जो है उसके बाद हम करने के बाद इसका जो है फैसला देंगे। तो अब आप देखें क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत सीनियर जो कुछ लीगल एक टीम है जो कि जाहिर है ऑपोजिशन से बिलोंग करती है, सीनियर लॉयर हैं हामिद खान साहब और जो है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली के ऊपर बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे जी कि ये इन्होंने आर्टिकल 5 को मिस इंटरप्रेट किया है। वो एक टीवी शो में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 5 जो है वो उसका कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉलो नहीं उसको कर सकता इन द एब्सेंस ऑफ एनी जुडिशियल लीगल प्रोसीडिंग्स। तो लीगल प्रोसीडिंग्स तो हुई नहीं है, तो ये और दूसरा वैसे भी आप इसके अंडर जो है कैसे ये जो सिटीजन्स हैं उनकी लॉयल्टी के बारे में पूछ रहे हैं और उनको कैसे आप ट्रेटर कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इस सिलसिले में आर्टिकल 6 इन्वोक करने की जरूरत है, जो कि बहुत ये भी प्रीमेच्योर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है अभी वो उसके ऊपर चल रही है, और वो चलेगी तो पता चलेगा। इसी तरह जस्टिस रिटायर शायक उस्मानी ने कहा जी कि ये इंटरप्रिटेशन जो है इसकी आर्टिकल 5 की बिल्कुल गलत है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी मजाक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लॉयर जिब्रान नासिर साहब जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि इसको बिल्कुल नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाए क्योंकि इसकी जो है आर्टिकल 5 की कोई भी वो नहीं बनती है। तो ये जनाब चल रही है। इसके अलावा जो पीपीपी के चेयरमैन है हमारे बीबी जरदारी साहब, उन्होंने आज ट्विटर के ऊपर एक मैसेज दिया है आईएसआई के जो डीजी हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तखार, और वैसे तो ये बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं आपको पता है ना, लेकिन मिलिट्री को ये घसीट रहे हैं अब इस सारे मामले में, ठीक है जी। तो पीपीपी जो कि बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक वो है पार्टी है, उसके जो चेयरमैन है उन्होंने आज फिर से मिलिट्री को आईएसआई के जो डीजी हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तखार साहब को कहा है कि आप क्लैरिफाई करो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ये जो है ये डिक्लेयर करे कि 197 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो हैं क्या वो ट्रेटर्स हैं क्योंकि वो इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए हैं, और इसके अंदर क्या कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी, और अगर ऐसा है तो इस सिलसिले में जो है कू जस्टिफाइड है कि नहीं है, यानी कि मिलिट्री को डायरेक्टली बुला रहे हैं ये कि भाई आप वो। तो अब इसके अंदर अभी तक तो उनका जवाब नहीं आया है, लेकिन वो इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईद जो हैं उन्होंने ये जो सारी बताई है बात कि जी हमने कम्युनिकेशन की, हमने अपने फिर एम्बेसडर को बताया, फिर एम्बेसडर इसके, तो इसकी क्या स्टैंडिंग है, तो इसके ऊपर आप जवाब दें। तो भाई साहब फिर तो डेमोक्रेसी नहीं आएगी ना, फिर तो बूट आएंगे, फिर आप कहेंगे ओ जी डेमोक्रेसी डिरेल कर दी, फिर बूट आ गए, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस है जी। अच्छा जी, और जनाब बड़ी खुशी की भी कुछ खबरें हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो ब्रुकलिन बेस्ड जो हैं सिंगर हैं जो कि हमने आपको बताया था कि ओबामा साहब की बड़ी वो जो विश लिस्ट के ऊपर हैं, उनका जो वो गाना है मोहब्बत उरूज आफ्ताब साहिबा का, उसको जी ग्रैमी मिला है। शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू विन अ ग्रैमी, और जो है ये 15 साल की उम्र में यहाँ पे सऊदी अरेबिया में पैदा हुई थी, और फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे लाहौर से इधर बोस्टन में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पे कि ये शी हैज स्टडीड एट अ वेरी वेरी अलीट बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक में इन्होंने पढ़ा है, और वहां पे प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग सीखी है, और अपना थर्ड एल्बम इन्होंने वेंचर प्रिंस जो था वो निकाला था, और उसके ऊपर जी इनको जो है बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर ये ग्रैमी दिया गया है। और जनाब मलाइका अरोरा खान का एक्सीडेंट हो गया वीकेंड के ऊपर, और वो कुछ जख्मी हुई, उनको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो ठीक हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पे जाहिर उनके जो बॉयफ्रेंड हैं अर्जुन कपूर साहब वो भागे भागे गए, फिर बहन अमृता अरोरा और फैमिली और बहुत सारे फ्रेंड्स भी गए। बहरहाल शी इज ओके नाउ, शी जस्ट इन्फॉर्म्ड। एंड माजिद भाई एसएस राजामौली जिसकी के मूवीज वो आती है ना बाहुबली टाइप की, वो सारी अब उन्होंने आपको मैंने बताया कुछ दिन पहले आरआरआर बनाई थी जो कि बड़ी पॉपुलर। कैन यू इमेजिन इन Just one week that movie globally has earned 900 crores. Wow. And this is only the fifth film moving towards 1000 crore. 100 crore ka pehle inka club hota tha. Aur jo movie 100 crore karti thi usko bada 30 मार खान मूवी समझा जाता था। दिस इज मूविंग टुवर्ड्स 1000 करोड़। इससे पहले जो इन्हीं की राजामौली साहब की जो आई थी बाहुबली मूवीज, उन्होंने 1000 करोड़ किया था। फिर वो जो थी उसकी मूवी जो है वो आमिर खान की दंगल, उसने किया था। आपको पता है उससे भी पहले जो मिथुन चक्रवर्ती की एक मूवी आई थी ना डिस्को डांसर, उसने भी जो है वो किया था 1000 करोड़, लेकिन वो भी उस जमाने में। तो ये भी अब जरा 1000 करोड़ से ऊपर ही किया था उसने, तो ये भी अब 1000 करोड़ की तरफ मूव करी विद इन जस्ट विद इन वन वीक। एंड जनाब कभी कभी ऐसा भी होता है, ओलिविया रोड्रिगो 19 इयर्स की हैं, उन्होंने 3 ग्रैमीज जीते जी, लेकिन होया क्या, नजर लग गई बेचारी को बैक स्टेज अपने ये ग्रैमीज उठा के ले गई थी, उसमें से एक गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। तो इसमें उन्होंने बड़ा वो एक्सीडेंटली वो कहती हैं मैंने ड्रॉप किया है, और वो बड़ी उदास थी, तो वो जो उदासी का उनका फेस था वो बड़ा वायरल हुआ, फिर लोगों ने जो है फोटोग्राफर्स ने बड़ी तस्वीरें खींची। बहरहाल पता नहीं इनको अब मिलेगा या नहीं मिलेगा,
रिप्लेस कर,
हाँ रिप्लेस कर देंगे। एंड जनाब जो खबरें सबसे बड़ी और भी हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने फाइनली ODI जो सीरीज थी 2-1 से जीत लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया ने आपको पता है पहला जीता था, दूसरा पाकिस्तान ने जीता था, जिसमें कि बाबर आजम ने फिर से 100 बनाए थे, और इस दफा भी उन्होंने 100 बनाए इमामुल हक के साथ। और जनाब इस दफा तो बॉलर्स ने भी कमाल किया, जो है ऑस्ट्रेलिया को जस्ट ओवर 210 पे इन्होंने उड़ा दिया इनको, और ये टारगेट जो है 37.5 ओवर्स में पाकिस्तान ने पूरा किया। और जनाब बाबर आजम ने अपनी 16th ODI 100 जो है 110 बॉल्स पे, और इसके ऊपर जो है इमाम उल हक ने इनका साथ दिया, 89 बॉल्स पे 50 बनाई और सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है जी माजिद भाई। उसके बाद ये दोनों जो थे बाबर आजम और इमाम उल हक, इन्होंने अनब्रोकन 190 रन का सेकेंड विकेट की उसमें बनाया, स्टैंड बनाया, क्योंकि ओपनर फखर जो है वो जल्दी आउट हो गए थे। एंड आपको पता है माजिद भाई हुआ क्या है, आपको पता है बाबर आजम व्हेन ही वाज जस्ट ऑन वन तो इसका जो है वो कैच नहीं पकड़ सके और उसके बाद फिर इसने 100 रन बनाए। व्हाट इज दिस ऑस्ट्रेलिया, बाबर आजम के साथ आप चांसेस ले रहे हैं, चांसेस ले रहे हैं बाबर आजम के साथ, ऐसे नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा जी, एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज जो है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव जो है ये हुआ था, डिफीट हुआ था, तो उसके ऊपर जो हमारे एक्स पाकिस्तान के कैप्टन हैं मोहम्मद हफीज साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ की। इसके अलावा जो है वकार यूनुस और वसीम अकरम भी, उन्होंने कहा हम प्राइम मिनिस्टर का साथ देंगे। लेकिन इसके ऊपर जो पीपीपी के लीडर सिंध से हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साई जो हैं सईद गनी, वो बड़े गुस्से में हैं साई। वो कहते हैं भाई साहब तुम क्रिकेट खेलो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ो हैं जी, तो ये है हमारी, तो उन्होंने कहा जी क्रिकेट खेलो पॉलिटिक्स हमारे ऊपर छोड़ो, तो ये जो है तुम कंट्री के साथ खेलने की कोशिश मत करो, ठीक है।
ये थी हमारी आज की खबरें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, एंड अब इंशाल्लाह ताला और अब हम आप लोग ये चलेंगे एक रमजान मुबारक का स्पेशल सेगमेंट की जानिब। 6:30 to 7:30 तक इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो का स्पेशल प्रोग्राम सुनिएगा और देखिएगा, और इसके बाद 7:00 to 7:30 तक डॉक्टर फरहत हाशमी बहुत ही अच्छा एक किताब देंगे आपको। तो भाई अब मैं लिए चलता हूँ आपको विदाउट एनी डिले एक नातिया कलाम की जाने पर, उसके फौरी बाद इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो का एक स्पेशल मैसेज, समाप्त फरमाइए।
हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूँ क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।
आप सुन रहे हैं रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रेडियो साजावा 770 AM पर। हमारे लाइव 24 घंटे की नशरियात को देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। डाउनलोड कीजिए हमारी फ्री ई आवाज ऑफिशियल ऐप एंड्रॉइड और एप्पल पर। हमारी नशरियात को अपने लोकल फोन पर सुनने के लिए डायल कीजिए 6478724900। आइए अब सुनते हैं रमजान अल मुबारक का खुसूसी प्रोग्राम। इसके लिए हमें तआवुन दिया है इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो ने। इस प्रोग्राम को आप रेडियो के अलावा हमारे चैनल ई आवाज टीवी और फेसबुक ई आवाज पर लाइव देख सकते हैं।
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. We begin by praising Allah Ta'ala Azza wa Jal. We allow the choices of mercy, the blessings to be upon the one that I love and the one that you love. That's none other than Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let's see opportunity and moment in time to send peace and salutations upon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, abdik wa rasulik, wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minati wal-muslimina wal-muslimat. Alhamdulillah, it's a real honor and a privilege for me to be addressing one and all this afternoon or this evening to all my dear and loved ones out in Canada and wherever else you may be listening. In the last few weeks, many of us have experienced the lockdown experience or the lockdown syndrome, where we have been restricted to our homes and to our vicinities and areas and so on. And this has left us with ample amount of time to introspect, reflect, ponder, and take stock of our lives, and to understand where we are heading, where we are heading. Nevertheless, alhamdulillah, we also have found ourselves in this blessed and beautiful month of Shahr al-Quran, Shahr Ramadan. May Allah Azza wa Jal accept from us, Ameen. So with the lockdown experience and with this month of Ramadan coinciding, subhanallah, you know, it's been an amazing, sure, real experience, ultimately, undoubtedly. And once again, I want to say to IFT, Jazakallah khairan for giving me this honor and this privilege to be having this program with all of you. But yes, as it is customary and as it is very, very, very important, everything starts with the Quran. You know, we want the blessings of the Quran. So let me take this opportunity to recite from the Quran Kareem for one and all, inshallah ta'ala azza wa jal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
May Allah Azza wa Jalla grant us understanding. You know, subhanAllah, the Quran al-Kareem is absolutely beautiful. And especially when you recite it with the understanding of it, you know, it just mesmerizes you. It just baffles you, subhanAllah. May Allah Azza wa Jalla grant us all the understanding of the verses which were recited. We have our brothers and sisters out there. Once again, I want to thank the Islamic Foundation of Toronto for giving me this opportunity for spending these moments with you. And, you know, we want to keep it a bit light-hearted. We want to keep it a bit just easy and calm, nothing a bit too hard and strict. But You know, when I read the profile of IFT, I was just completely blown away, subhanAllah. You know, for this organization in Toronto, in Canada, doing such an amount of amazing work, subhanAllah, within the borders of Canada, beyond the borders of Canada, you know, I was just blown away, subhanAllah. And let me perhaps seize this moment in time and say to everyone of you out there, let's support IFT. This is the organization. Let's support it. SubhanAllah, look at the work that this organization is doing with regards to the Quran. This is the month of Shahr al-Quran. And mashaAllah, tabarakAllah, IFT is doing a phenomenal amount of work with regards to the Quran, whether it's Quran classes, whether it's his classes, you know, whether it's tarbiyah, whether it's seerah, you know, organizing these youth conferences, you know, so much qurbani programs, subhanAllah, these soup kitchens. You know, I was just blown away because it is the first time, honestly speaking, it is the first time I've come across a masjid or such an institution which is doing so much of work in so many diverse amount of fields. So mashallah to every one of you out in IFT, we say Allah bless you, Allah take you from strength to strength. But let us keep in mind that, you know, in order for us to run such operations, such programs, you know, it requires some kind of assistance, some kind of financial assistance, some kind of resources. And this is your time. This is your moment in this month of Ramadan. Let's support them. Let's support this organization. It is our organization assisting us, helping us, doing things for our future, doing things for our children, for generations to come. So let's call those numbers 647-468-3040. Call that number. Let's support the IFT. Let's give them our support in this beautiful month of Ramadan. If you cannot get them on that number, call them on 416-988-1339. Or you're more than welcome to get onto the website, islamicfoundation.ca. Islamicfoundation.ca. Let's support them. SubhanAllah, you know, I was just simply blown away by the amount of work this organization is doing, subhanAllah. And this just says to me, people in Canada, you people, mashallah, are really motivated. You people are really motivated. In fact, you've inspired me just reading the profile of Islamic Foundation of Toronto. You know, I've been inspired. And today I was saying to a few brothers that, wow, look at this organization down in Canada, the amount that they are doing, the amount of work that they are doing, subhanAllah. You know, the discharging of zakat, the discharging of sadaqah, the discharging of fitrah, you know, qurbani programs. And then subhanAllah, to top it all, even they have an interfaith program. Wow, subhanAllah. And that's pretty much needed, especially for those of us who are not living in Muslim countries. We live and we have to have a harmonious relationship with one and all. And subhanAllah, Islamic Foundation of Toronto, you're providing a platform for interfaith. How important, subhanAllah, you've kept avenue, every field covered. May Allah Azza wa Jalla bless you and take you all from strength to strength. Even at this point in time, you know, we also remember our marhum brother Salahuddin Khan, who had passed on, you know, was very instrumental, who assisted quite a bit in the masjid. May Allah Azza wa Jalla give him the highest status in Jannatul Firdaus. Beloved brothers, I think it is time for the nasheed. Let me take this opportunity to sing something for you, inshallah. You know, every one of us, we love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And when we speak to our pious predecessors, you know, and those that have passed on, and when we analyze their lives, study their lives, you will find that those who engaged in salawat and durood upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in an abundance, they had climbed the spiritual ladder very, very quickly, subhanAllah. So today, I want to recite an nasheed in honor and praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which is also a salawat and durood. And you know, this was taught to me by a blind person who hails from Thailand. And this individual, he was studying in South Africa, and he was partly responsible for translating the Quran into Braille. He was partly responsible for translating the Bukhari Sharif into Braille. And he had taught me these words. And my mother had said to me, whenever I go to Madinatul Munawwara, whenever I'm in front of the Rawza Mubarak, recite these beautiful words and these beautiful couplets. And every time I recite these words and this beautiful couplet, it does something to my heart. So may Allah Azza wa Jal grant us the understanding of this. And may Allah Azza wa Jal brim our hearts with the love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Nabiyun, 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 بشير 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 نذير 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 نبي 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 سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهنا معدنا ومنك كل من منا لبيك إن الحمدنا والملك لا شريك لا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة استجب دعانا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع نية وسريف مقاعد الإدا والطوف استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله.
صلاة الله سلام الله حبيب الله.
Jazakallahu khairan. May Allah Azza wa Jalla grant us the understanding. Allah give us understanding. And may Allah Azza wa Jalla brim our hearts with the love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ameen, ameen ya Rabb. So beloved brothers, mashallah, once again, I want to thank Islamic Foundation of Toronto, IFT, for inviting me and giving me this honor and this privilege to connect with all of you. Once again, remember, in order for us to run these institutions, to run these programs, to run the great work which is happening there, it takes a lot of resources, and that's where we need your help. We need your assistance, and we need your help. So I make a humble appeal, call this number, and let's give them our support. Make that donation. The best time to donate is in this month of Ramadan. Inshallah, the rewards will be maximized greatly. So let's call this number, let's make our donation, let's support this fundraising campaign for the IFT, for the great work that they're doing. I just mentioned earlier on, there's so much happening. It will take me such a long time to speak about it. I don't have the time at hand to actually go into depth and tell you of the great work the IFT is doing. But me, just reading the profile of IFT, I've been blown away, subhanAllah. So call this number. Every one of us, we need to introspect. Let's look at our spirituality. You know, life is very, 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 very short. So many people who were with us the last Ramadan, they're not with us in this Ramadan. Allah has blessed me and you to enjoy these precious moments of Ramadan, and especially in these last 10 days. These are really precious, precious moments. And all we need to do, these opportunities don't come by every day. When Allah gives us these opportunities, we grab these opportunities and we make the best of these opportunities. This is the time when we can maximize our rewards. So let's exert ourselves in prayer. Let's exert ourselves in worship. One of the best ways to do this, set up a routine or a timetable. Set up a routine or a timetable and be disciplined. Be disciplined. So let us become punctual with regards to our tahajjud, with regards to our salah, our tahajjud salah. And let's increase our recitation of the Holy Quran Kareem. And wallahi, my beloved brothers, I say to you and my sisters, that the Quran is such, whether you understand it or not, wallahi, whether you understand the Quran or not, but when you develop and you build a connection and a relationship with the Quran, the blessings of the Quran will just simply encompass you. It will befall upon you. It will envelop you. And this is the barakah of the Quran. All we need to do is build that relationship with the Quran. Recite the Quran Kareem. Understand it. If you cannot do that, try and listen to a lecture where somebody is explaining to us the meaning of the Quran Kareem. Let's try to connect and build a relationship with the Quran Kareem in every single way that we can. This is the beauty. This is the month of the Quran. This is Shahrul Quran. This is the beauty month. So alhamdulillah, for those of us who need that website, it is islamicfoundation.ca. Islamicfoundation.ca. Click onto that website. Go on there. Check out the amazing work this organization is doing. Whether it's promoting the Quran Kareem, propagating the Quran Kareem, preserving the Quran Kareem, Islamic Foundation of Toronto is doing exactly that. Tarbiyah programs, Seerah Jalsas, programs for the youth, you know, discharging of Zakat, Sadqa, Fitra, Qurbani programs, soup kitchens, subhanAllah, an interfaith platform. Wow, this organization is doing simply amazing, amazing stuff down in Canada. And I make dua that one day I can be there with all of you in Canada, and I can also be part of the IFT, and I can be at your masjid, inshallah, at your mosque, and we can enjoy these moments and these times together, inshallah, and I can do a live performance for all of you. But unfortunately, because of what is happening in the world today, COVID-19 crisis, the lockdown phenomenon, you know, we cannot travel, we cannot move about, so we need to connect with one another using whatever technology we have at hand. But alhamdulillah, it is at least something. I'm at least still in a position to connect to one and all. Yes, I think that's enough of me talking, and I think it's time again for another nasheed, inshallah ta'ala azza wa jal. You know, subhanAllah, let me take this opportunity to render something in praise and in honor of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal with simply a zikr. And if inshallah you know these words, you're more than welcome to try and join in, inshallah.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أول آخر يا الله أول آخر يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الظاهر الباطن يا الله الظاهر الباطن يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم يا الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله میرے مولا تیرا پانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس خوار خانے میرے مولا تیرا فانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس خار خانے میں تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے ہے پھر بھی میں زی تیری ساری دنیا کو سلانے میں میرے مولا میرے مولا تیرا فانی نہیں
سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس خار خانے میں.
جزاک اللہ احسن الجزاء, بارک اللہ فیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حق الله الله يا الله الله حق الله يا الله حق الله الله يا الله الله حق الله يا الله.
You are listening